कृष्ण लीला की कथा चल रही है कई दिनों से। कल हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में बहुत अद्भुत लीला की त्रिणावर्त के साथ में। इस लीला में भगवान ने बहुत आनंद लूट लिया और आखिर सारे ब्रजवासी बहुत आश्चर्यचकित रह गए, जैसे हर लीला करने के पश्चात होता था, और अपने आप में सब चर्चा करने लगे कि भगवान की कृपा कैसे कृष्ण के ऊपर है। अपने बहुत ही तीव्र प्रेम के कारण वो ये नहीं जानते थे कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और उनको किसी के संरक्षण की, सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। सारा ब्रह्मांड, सारे सृष्टि जो है इन्हीं की कृपा के लिए तरस रही है, तो कृष्ण को किसी की कृपा की क्या आवश्यकता है। तो ऐसी भावना ब्रजवासियों की थी केवल इसलिए कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति बहुत ही तीव्र प्रेम था। जब त्रिणावर्त का वध हुआ तो उस समय कृष्ण भगवान की आयु करीब 1 साल की थी। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर लीलाएं भी की। थोड़े समय बाद अपने घुटनों पे वो चलने लगे, कृष्ण और बलराम दोनों घुटनों में चलते चलते कई लीलाएं की उन्होंने। गौशाला में जाकर गाय के बछड़ों के पूंछ पकड़ते थे, गाय के बछड़े उनको इधर 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 उधर खींच के ले जाते थे मिट्टी में, और सारे गोपियां इस दृश्य को देखकर हंसते थे, ताली मारते थे। और आगे चल के भी कृष्ण और बलराम, अंदर कुत्ता आ रहा है, देखिए मंदिर में उसको भगाई है। फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में माखन चुराया करते थे, गोपियों के घर में जाके हंगामा कर देते, और इस तरह से गोपियां शिकायत लेकर आती थीं माता यशोदा के पास में। तो ऐसी लीलाएं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं प्रदर्शित कर रहे थे भगवान इस उम्र में। फिर आगे चल के एक बार बलराम जी ने कृष्ण के बारे में शिकायत की कि कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई है, और माता यशोदा ने डांट लिया कृष्ण भगवान को। कृष्ण ने कहा कि मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। माता यशोदा ने कहा मुंह खोल के दिखाओ। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी बार विराट रूप का दर्शन माता यशोदा को कराया अपने मुखारविंद में। और इसके बाद दामोदर लीला हुई। इन सब लीलाओं का वर्णन अलग अलग दूसरे समय हम विस्तार में करेंगे, क्योंकि विशेष करके यहां असुरों के वध के बारे में चर्चा चल रही है, तो इन लीलाओं को विस्तार में हम स्किन के बारे में नहीं कहेंगे। तो इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण को सबक सिखाने के लिए माता यशोदा ने उनको एक बार उखल से बांध दिया। उखल से बांधने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस उखल को खींच दिया, यमल अर्जुन वृक्ष जो वहां थे उनको खींच डाला नीचे, और नलकुवर और मणिग्रीव को मुक्त करा दिया। तो ये लीला भी उसी समय हुई, जैसे जैसे कृष्ण भगवान अपने कुमार अवस्था में बढ़ते जा रहे थे, उनकी आयु जैसे बढ़ती जा रही थी। और ऐसा समय आया, थोड़े दिन बाद ये सारे ब्रजवासी एकत्र हुए और आपस में सलाह मशवरा करने लगे, और उनमें से जो सबसे बुजुर्ग थे उपानंद, देश काल पात्र के अनुसार वो बड़े ज्ञानी थे कि सही समय के अनुसार, सही जगह के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। सारे ब्रजवासी उनका बहुत सम्मान करते थे और उपानंद ने सब सारे ब्रजवासियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि जब से कृष्ण और बलराम आए हैं इस दुनिया में, तब से कोई न कोई कष्ट आते जा रहा है, कोई एक के बाद एक कोई न कोई असुर आते जा रहे हैं, इनको मारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से ये बच जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है इनको। पहले तो जन्म होने के थोड़े ही समय पहले बाद में पूतना राक्षसी आई और कृष्ण कैसे बचे हमें ये नहीं मालूम, लेकिन बच गए। और थोड़े ही दिन बाद फिर जैसे ही यशोदा ने कृष्ण को इस शकट के नीचे रख दिया था तो शकट ही गिर पड़ा। शकट के भीतर कितने सारे भारी भारी बर्तन थे, शकट का वजन भी इतना भारी है, लेकिन कृष्ण भगवान के शरीर का एक बाल को भी कुछ नहीं हुआ। ये तो विष्णु भगवान की असीम कृपा है बाल कृष्ण के ऊपर, इसलिए वो बच पाए। और आगे चल के त्रिणावर्त असुर ने कृष्ण को वो आकाश में ऊपर ले गया, लेकिन इसके बावजूद भी श्री हरि की अनुकंपा थी कि कृष्ण बच गए। और थोड़े ही दिन पहले ये बाल कृष्ण ने दो पेड़ों को खाट डाला और पेड़ कृष्ण के इधर उधर गिरे, थोड़े ही अंतर था उनके बीच में वृक्षों के बीच में, नहीं तो वो वृक्ष के नीचे आ जाते, मर जाते। इससे भी हमें समझना चाहिए कि भगवान की कृपा कृष्ण के ऊपर है, बलराम के ऊपर है। तो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम इतने सारे असुरों के क्रूर कार्यों से बचते आ रहे हैं। इससे हमें समझना चाहिए कि केवल भगवान की कृपा ही है और तो कुछ नहीं है। कोई न कोई असुर अवश्य कोई प्रयत्न कर रहे हैं इनको मारने के लिए। तो उपानंद कहने लगे कि कृष्ण और बलराम के हित के लिए, ये गोकुल को बचाने के लिए, गोकुल के हित के लिए भी हमें यहां से जाना चाहिए। तो मेरा प्रस्ताव है कि हम वृंदावन में चले जाएं, जो कि नंदीश्वर और गोकुल के बीच में है। ये गांव बहुत सुंदर है, हरी भरी खेत है, वहां पर गायों को चरने के लिए बहुत अच्छी जगह है। वहां पर पास में गोवर्धन पर्वत है जहां पर अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी होते हैं, अच्छी अच्छी हरी भरी घास है वहां पर, जहां गाय चर सकते हैं। वहां पर पानी भी बहुत शुद्ध है, सारे प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति ये गोवर्धन पर्वत कर सकता है और साथ साथ यमुना जी भी पास में है। तो हमें वृंदावन जाना चाहिए, यही मैं समझता हूं कि उचित है हम सबके लिए। तो सारे जब ब्रजवासियों ने उपानंद के प्रस्ताव को सुना तो सारे कहने लगे, साधु साधु, बहुत सही बात कही आपने, बहुत अच्छा। तो उपानंद ने कहा, तो अगर आप इस सलाह से सहमत हैं तो आज के आज ही हमें यहां से निकलना होगा। अच्छे काम में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, खतरे इतने आ रहे हैं गोकुल में कि जितने जल्दी हम यहां से निकल पड़े उतना अच्छा है। तो सारे ब्रजवासियों ने तैयारी शुरू कर ली और बहुत ही जल्दी वहां से निकल पड़े। वैसे तो ब्रजवासियों के पास में था ही क्या, उनके पास गाय थी, गाय के बछड़े और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह कपड़े थोड़े बहुत थे। आजकल अगर हमें कोई कहे कि घर बदल के आप जाओ तो फिर आप जानते हैं कि कितने दिन लगेंगे, फिर ट्रक लॉरी को बुलाने पड़ेंगे, फिर हमारे टीवी को बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा कि कहीं इधर उधर टूट ना जाए, हमारे ग्राइंडर मिक्सर और न जाने क्या क्या सामान होते हैं, इतने सारे सामान होते हैं कि उसमें अनावश्यक चीजों के लिए 2-3 ट्रक भर जाएंगे। लेकिन ब्रजवासियों का जीवन बहुत सरल था, सरल जीवन ऊंचे विचार, इसलिए उनको जब एक घर से घर बदलना पड़ा तो कोई कठिनाई नहीं हुई। थोड़े बहुत जब बर्तन वगैरह थे और कपड़े थे वो एक बैलगाड़ी में डाले, सबके पास बैल थे, गाय थे और बैलगाड़ी थी, तो बैलों को लगाया हाथ गाड़ी के सामने, हाथ गाड़ी में सारे बर्तन कपड़े वगैरह रखे, खुद भी बैठ गए। जो महिलाएं थी, वृद्ध थे, जो बच्चे थे, जो बीमार थे, वैसे बीमार तो बहुत कम हुआ करते थे, आजकल की तरह नहीं था वो समय, उनको बैलगाड़ी में बिठा दिया, गायों को आगे रख दिया और चल पड़े। बस एक दिन में, थोड़े घंटों में उपानंद ने कहा कि चलो निकल पड़ो सब, थोड़े दो तीन घंटे में तैयार होकर निकल पड़े, घर का घर निकाल करो, निकल गए। और वहां पर जो घर उन्होंने बनाए थे, ऐसा भी नहीं कि कहीं सीमेंट आरसीसी का, कहीं स्टील वगैरह बनाकर किया था कि हम कोई शोक करें कि अरे ये घर छोड़कर जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च किया हमने इस घर के ऊपर, ये पता नहीं कितने रुपए स्क्वायर फुट में हमने खरीदा था, अभी छोड़कर जाना है, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। मिट्टी के घर बनाए हुए थे और मिट्टी के घर में कोई खास बात नहीं, मिट्टी वहां थी, खुद के बल से सब बना दिया आसानी से, कोई परेशानी नहीं, निकल पड़े वहां पर। और माता यशोदा और माता रोहिणी ने कृष्ण और बलराम को अपने साथ में रख लिया एक बैलगाड़ी पे, क्योंकि वो एक क्षण भी इनके बिना रह नहीं सकते थे। और चलते चलते सारे ब्रजवासी गण वो कृष्ण और बलराम की लीला का गुणगान करते करते चल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी सुंदर वर्णन करते हैं कि जैसे वो यात्रा चल रही थी तो और कोई ध्वनि वहां गूंज नहीं रही थी सिवाय कृष्ण और बलराम की लीलाओं के। आपस में चर्चा करते जा रहे थे, गीत गाते जा रहे थे। ब्रजवासियों की यह प्रथा थी कि हर रोज जो भी लीलाएं हुआ करती थी कृष्ण और बलराम की, उनको वो कविता के रूप में लिखा करते थे। कभी कभी ऐसे कवि भी होते थे उनके बीच में, ब्रजवासियों के बीच में। ज्यादातर गोकुल में, ब्रज में वैश्य समाज ही ज्यादा था, लेकिन फिर भी इनके बीच में ब्राह्मण पुरोहित भी हुआ करते थे, कम मात्रा में लेकिन हुआ करते थे, और वो भी प्रामाणिक ब्राह्मण थे। और साथ साथ ऐसे कवि भी हुआ करते थे, प्रोफेशनल जो संगीतकार हैं, कवि हैं, जिनको अनुष्ठानों में, उत्सवों में बुलाया जाता था, जैसे कृष्ण भगवान के जन्म के उत्सव पे और फिर कृष्ण भगवान के पहले सालगिरह पे भी बुलाया गया था। तो ऐसे जो संगीतकार, नाट्यवाद वगैरह हुआ करते थे वो भी साथ में थे। तो कृष्ण भगवान की लीलाओं को वो सुंदर कविता और भजन के रूप में लिखा करते थे, संगीत में उसको डाल देते थे और फिर सुंदर रूप में इसका गान किया करते थे। तो सारे ब्रजवासी साथ साथ भी ऐसे गायन किया करते थे। तो देखिए कितना रम्य सुंदर वातावरण हुआ करता था। सुबह से रात तक गोपियां और गोपगण भी अपने अपने निजी काम में लग जाते थे, लेकिन काम करते करते कृष्ण बलराम के लीलाओं के गुणगान करते थे। गोपियां जब माखन बनाती थी तो उस समय वो ऐसे गीत गाती थी। गोपगण अपने गायों को चराने ले जाते थे तो चराते चराते वन में जाते हुए भी वो ये गीत गाया करते थे। गोपियां अपने घर में रसोई में का मग्न होती थी तो उस समय भी ये गीत गाया करती थी। और जैसे इस समय वो गोकुल को छोड़कर वृंदावन की ओर जा रहे थे सब बैलगाड़ी में बैठते हुए और गोपगण आगे चलते हुए अपने तीर धनुष लेकर, तो उस समय भी वो गीत गा रहे थे। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हालांकि ये वैश्य समाज था, फिर भी गोपगण जो है अपने सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा के लिए बड़े तैयार थे, हाथों में तीर धनुष देकर। और ब्रजवासियों में से कई ऐसे थे जो बड़े हट्टे खट्टे थे, जो सुरक्षा का काम करते थे, जैसे गोकुल धाम में भी करने वाले हैं, सबको सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने वाले। तो चलते चलते ऐसे बहुत ही सुंदर एक माहौल हो गया, ऐसा दृश्य सुंदर हो गया। हजारों की संख्या में गाय आगे चल रहे हैं और बैलगाड़ियों में सवार होकर सारे महिलाएं, बालक, कृष्ण बलराम आदि पीछे बैलगाड़ी पर चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं सारे गोपगण, और ऐसे सुंदर दृश्य दिखाई पड़ रहा था। फिर जाकर वृंदावन पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने अपने बैलगाड़ियों को से एक बाजू घेर लिया ऐसे, जैसे एक बाउंड्री बना लिया, और दूसरी ओर जैसे कांटे के जो झाड़ियां हैं वो तो थे ही, तो उनसे दूसरी ओर जो है वो कांटों की झाड़ियां थी, इसलिए उसके बीच में बैठ गए एक रात के लिए, और बैठकर फिर वहां उन्होंने विश्राम किया। और फिर धीरे धीरे से जब कृष्ण बलराम ने देखा कि कितना रम्य वातावरण है, तो बहुत आनंद हुआ कृष्ण बलराम को। सोच लगे कि देखो यहाँ गायों के लिए कितनी अच्छी जगह है। लोगों की दृष्टि वहां केवल ये होती थी कि गायों के लिए अच्छा है कि नहीं है। हमें घर बदलना होता है तो हम कितनी चीजें देखते हैं, टीवी एंटेना के लिए जगह है कि नहीं, यहाँ केबल टीवी आती है कि नहीं, और वहां पर फिर बाजार नजदीक है या नहीं, तो इतने सारे चीजें शहर में सोचने पड़ते हैं। लेकिन ब्रजवासीगण क्या सोचते थे, गायों के लिए चरने के लिए जगह अच्छी है कि नहीं, आप सब यहाँ पानी नजदीक है कि नहीं गायों को पीने के लिए। तो ऐसी दृष्टि कैसे आजकल बदल गई है पहले के जमाने से, वो हम भागवत पढ़ने से भी हमें पता चल जाता है। तो कृष्ण बलराम को बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे अपने बाल लीलाएं चालू रखते थे, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में खेल किया करते थे। जब वो गाय के बछड़ों को चराने ले जाते थे, वृंदावन में आकर ही गोपगणों ने कृष्ण बलराम और उनके हम उम्र के जो बालक थे उनके हवाले गाय के बछड़ों को सौंप दिया, उनको चराने ले जाते थे। तब तक उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी थी, लेकिन जब कुमार अवस्था के अंत तक पहुंचे, अर्थात चार पांच साल की उम्र तक पहुंचने लगे, तो उस समय उनको गाय के बछड़ों की जिम्मेदारी जो है वो दे दी। तो गाय के बछड़े जब अपने घास खाते रहते थे, चरते रहते थे, तो उस समय कृष्ण बलराम और अपने ग्वाल बाल मित्र के साथ खेल किया करते थे। कभी कभी वो पेड़ के ऊपर जो फल हैं उनको खाने के लिए अनेक जो है वो तरीके ढूंढ निकालते थे। जैसे आजकल के बालक आम के पेड़ के नीचे से कैसे कैरी या आम निकालने का प्रयास करते हैं, कई बच्चे पत्थर मारते तो कई बच्चे ऐसे रस्सी बांधकर उसमें पत्थर बांध कर ऊपर कर देते, कोई चढ़ जाते तो नीचे फलों को खींचने के लिए, जैसे साधारण बालक करते हैं। कई बार आंवला की फल से या बेल फल से फुटबॉल खेलते, और अपने पैरों में जो नूपुर थे उनके छन छन आवाज आते, ये लोग जब बच्चे जब फुटबॉल खेलते इस प्रकार से। और कभी पक्षियों के पशुओं की नकल करते, आवाज करते, ऐसे अपने दिन बिताया करते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि कृष्ण बलराम जब गाय के बछड़ों के संग में थे, तो कृष्ण ने देखा कि एक असुर आया हुआ है जिसका नाम है वत्सासुर। वत्सासुर क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को वत्स के रूप में या गाय के बछड़े के रूप में परिवर्तित कर दिया था और गाय के बछड़ों के बीच में आ गया था। ये भी कंस का दोस्त था, कंस ने भेजा था, जैसे सारे असुरों को तो कंस ने ही भेजा था। ये वत्सासुर भी कंस का मित्र था, इसलिए गाय के बछड़ों के बीच में आ गया और अपना रूप गाय के बना दिया, वत्स का बना दिया। तो उस समय कृष्ण देख रहे थे, आखिर कृष्ण को धोखा कौन दे सकता है। तो कृष्ण भगवान ने चुपके से इशारा किया बलराम जी को कि वहां देखो असुर आया है। तो चुपके से दोनों कृष्ण और बलराम पीछे गए वत्सासुर के, वत्सासुर के पीछे के पैर पकड़े कृष्ण भगवान ने जल्दी से तेजी से पकड़ लिए और आकाश में ऐसे हवा में उनको घुमाया, तेजी से तीन चार बार घुमाया, इतने तेजी से घुमाया कि वहीं के वहीं उस असुर के प्राण निकल गए और ऊपर फेंक दिया हवा में, और सीधे इसका शरीर जो है वो एक वृक्ष के ऊपर गया, और ये वृक्ष है कपित्थ, फलों का वृक्ष था ये कपित्थ को का, और एक नाम है क्षतबेल फल, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत रसमय होता है, और इसका स्वाद जो है खट्टा मीठा होता है। तो वास्तव में कृष्ण भगवान चाहते थे कि सारे ग्वाल बालों को ये कपित फल खिलाएं। तो उन्होंने ऐसे वत्सासुर को फेंक दिया कि वत्सासुर का वध तो हो ही गया, साथ साथ एक ही काम में क्यों न अनेक कार्य हो जाएं, क्यों न हम कपित फल भी खा लें, तो अलग से प्रयास न करना पड़े कपित फल निकालने के लिए। तो भगवान की लीलाएं ऐसे होती हैं, एक लीला में अनेक कार्य संपन्न कर डालते हैं, अनेक इच्छाओं की पूर्ति कर डालते हैं। तो वत्सासुर का वध करते करते इतने सारे कपित फल भी नीचे गिर पड़े और सारे ग्वाल बाल जो है फिर उसको खाने लगे अच्छी तरह से। और जब उन्होंने देखा कि वत्सासुर का वध हुआ तो सारे ग्वाल बाल जो हैं वो बड़े आनंद से ताली मारने लगे कि वाह 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 कृष्ण, क्या बढ़िया काम किया, कैसे पता चला तुम्हें कि असुर था। तो कृष्ण की पीठ थपथपाने लगे, वाहवाकार करने लगे, और जैसे हर बार होता था ऊपर देवतागण भी ऊपर से शंख बजाने लगे तो कोई बाजे बजाने लगे। इस प्रकार से सुंदर लीला की भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध करके। तो ये वत्सासुर जो है वो पहले जन्म में प्रमिल नाम के का असुर था, जो मुरा नाम के असुर का लड़का था, बच्चा था। और एक बार बहुत शक्तिशाली था ये प्रमिल असुर। तो प्रमिल असुर ने देवताओं को हरा दिया था युद्ध में। युद्ध में हराने के बाद में इतना घमंड आ गया प्रमिल असुर के अंदर कि वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्रवेश कर लिया उसने। और वहां पे वशिष्ठ मुनि के पास में, जैसे हम कई महीने पहले चर्चा कर रहे थे विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि की कथा, जब विश्वामित्र मुनि उस समय तो राजा थे, वो विश्वामित्र मुनि ने देखा था कि यहाँ पे सुरभि गाय है, सुरभि गाय को छीन लेना चाहा, तो कैसे वशिष्ठ मुनि ने केवल अपने हुंकार से विश्वामित्र राजा के सारे सेना को खत्म कर दिया। ये कथा हमने विस्तार में एक बार कही थी, आपको याद होगा। तो खैर वशिष्ठ मुनि के पास में ऐसे सुरभि गाय हुआ करते थी, इसका नाम था नंदिनी। तो जब ये प्रमिल नाम का असुर आया वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, उसने चाहा कि मैं ये नंदिनी को चुरा कर ले जाऊं। तो अपने आप को उसने गाय के रूप में परिवर्तित कर दिया। गाय के रूप में परिवर्तित कर दिया तो नंदिनी को ये समझ में आया। नंदिनी ने कहा कि तुम तो असुर हो लेकिन तुम मुझे चोरी करने के लिए गाय का रूप धारण किए हो, इसलिए मैं शाप देती हूं कि तुम अगले जन्म में गाय के रूप में ही तुम्हें, वत्स के रूप में ही तुम्हें पैदा होना होगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो इस समय प्रमिल जो थे उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और वशिष्ठ मुनि के शरण में गए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ठीक है, मैं शाप को तो पूरी तरह से बदल नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि कृष्ण भगवान तुम्हारा खुद वध करेंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। देखिए सारे जो असुर हुए हैं ना कृष्ण लीला में, प्राय हम यही देखते हैं कि उन्होंने कोई ना कोई अपराध तो किया जिसके वजह से उनको शाप मिला असुर के शरीर प्राप्त करने के लिए। और जब उन्होंने क्षमा याचना की तो फिर शाप का भार जो है थोड़ा कम किया गया और उनको वरदान मिला कि आपको कृष्ण भगवान का संग होगा, कृष्ण भगवान के चरण कमलों के का स्पर्श होगा, कृष्ण भगवान साक्षात आपका उद्धार करेंगे। तो देखिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, जो बड़े संत ऋषि होते हैं, उनका शाप तो शाप क्या, वास्तव में वरदान ही होता है। क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं, महात्मा होते हैं, वो सदैव दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं। जब साधारण व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोसता है तो उसका बुरा सोचकर ही कोसता है, सोचता है। कभी कभी व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं, शाप देते हैं, दूसरे को कोसते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो बुरा हो जाए। तो उसमें ये भावना नहीं रहती कि सामने वाले के का हित हो जाए। लेकिन जब संत महात्मा ऐसे किसी को शाप देते हैं तो उनका भला सोचकर ही देते हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है, कई बार भक्त भी ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों है कि असुर जो ऋषि मुनि हुए हैं, वैष्णव भी हुए हैं, क्यों वो ऐसे शाप देने के लिए इतने आतुर रहते हैं? उनको तो शांत चित्त का होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों है कि वो शाप देते रहे? कारण ये है कि ये जो महात्मा हुए, संत ऋषि हुए, वो चाहते थे कि जो दुष्ट भावना है सामने वाले व्यक्तियों में वो नष्ट की जाए, उनका उद्धार किया जाए। तो उनके हित के बारे में सोचकर ये हमेशा ऐसे शाप दिया करते थे। कोई मिथ्या अहंकार की भावना से नहीं किया करते थे। इसे साधारण व्यक्ति जब शाप देते हैं तो भौतिक क्रोध से या मिथ्या अहंकार की भावना से उत्पन्न होते हुए क्रोध को से वो शाप करते थे। लेकिन ऐसे जब शाप हम यहां देखते हैं, वशिष्ठ मुनि के शाप इत्यादि या नंदिनी के शाप, वो ऐसे नहीं थे। इसीलिए जब क्षमा याचना करते थे तो उनको वरदान देते थे कि कृष्ण भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, चिंता नहीं करो। तो इस प्रकार से वत्सासुर का जन्म लेना पड़ा प्रमिल असुर को, और फिर खुद भगवान ने अपने हाथों से, अपने ही दिव्य हाथों से वत्सासुर का स्पर्श किया और उसे खत्म कर दिया। भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं आगे चल के कि ये वत्सासुर जो है ये एक अनर्थ का प्रतीक है। एक बालकीय जो मस्ती करने की या दुष्ट भावना जो होती है बच्चों के या नव युवकों में युवतियों में, इसकी इसका प्रतीक है। हम देखते हैं कि इंद्र तृप्ति की भावना नव युवकों में युवतियों में ज्यादा बढ़ जाती है। जब कोई बाल अवस्था में होता है तो अपने माता पिता की बात मानता है, अगर हो सकता है तो अच्छी तरह से मंदिर में भी आता है, सब कुछ कार्य करता है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आयु में 10, 12, 13 साल का हो जाने लगता है जैसे जैसे, तो उसकी स्वतंत्र भावना हो जाती है और स्वतंत्र भावना होकर वो संसार का भोग करना चाहता है। और ये भावना जो है इस उम्र में इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, खास करके जब बच्चे कॉलेज की उम्र में जाते हैं और इतने इंद्र तृप्ति के साधन देखते हैं कि हम कितना भोग कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, तो उस भावना को रोकना बड़ा कठिन होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बात को के ऊपर टीका करके कहते हैं कि बच्चों को खेल कूद में रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए ज्यादा, लेकिन इनकी इंद्र तृप्ति की भावना जो होती है उसको खत्म करने के लिए इनकी सारी शक्तियां जो हैं वो कृष्ण की सेवा में लगानी चाहिए। किसी न किसी तरह से बच्चों को, चाहे वो किसी भी आयु के क्यों न हो, उनको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, भजन कीर्तन में लाना चाहिए, उनको भगवान के फूल माला बनाने में उनको लगाना चाहिए, भगवान की सेवा करने में, कुछ कोई भी ऐसे कार्य करने में, भगवान के मंदिर को साफ करने में, मंदिर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने में, पोता लगाने में, भगवान के बर्तन धोने में, इतने सारे सेवाएं होती हैं भगवान के लिए, ऐसे सेवाओं में बच्चों को लगाना चाहिए, जिससे कि उनके हृदय में जो दुष्ट भावनाएं हैं, दुष्ट भावनाएं क्यों है, क्योंकि अनादि काल से जीव ये भौतिक संसार का संग करते आया है, इसलिए दुष्ट भावनाएं हैं। तो दुष्ट भावना को नष्ट करने के लिए उन्हें कृष्ण भावना में, किसी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ये भी बताते हैं कि वत्सासुर मतलब वो भावना, वो अनर्थ हमारे हृदय में जो कि इंद्र तृप्ति के लिए बहुत ही लोभी है, और जिसकी वजह से, जिस अनर्थ की वजह से व्यक्ति भौतिक संसार में, भौतिक जीवन में बहुत मग्न हो जाता है। तो वत्सासुर रूपी असुर जो हमारे हृदय में है, जो हमको इंद्र तृप्ति की ओर प्रेरित कर रहा है, उस असुर का वध करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण से तीव्र प्रार्थना करनी चाहिए कि इंद्र तृप्ति की भावना हमारे हृदय में बहुत तीव्र है, हर मोड़ पर इंद्रियों को हम वश में नहीं कर सकते, बहुत खतरा है, तो आप ही केवल हैं जो इस असुर का वध कर सकते हैं। तो कृपया इस असुर को पकड़िए, घुमाइए और बाहर फेंक दीजिए हमारे हृदय से, ताकि जो मीठा फल है, कपित फल कृष्ण प्रेम का, वो हमें प्राप्त हो। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो वत्सासुर के वध के बाद में थोड़े ही समय बाद में और एक असुर वहां आया, जिसका नाम था बकासुर। जब ग्वाल बाल अपने गाय के बछड़ों को लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सामने ही एक विशाल पर्वत के समान एक कोई पशु है, पक्षी है, पता नहीं क्या है, ये अद्भुत एक कोई रूप दिखाई पड़ रहा है, जिसको पहले कभी भी ग्वाल बालों ने नहीं देखा था। तो देखने लगे कि ये तो एक बतख के समान है, एक बक के समान है, और इसकी चोंच जो है बहुत लंबी है, इतनी लंबी है और चोंच खोल के बैठा है ये, और बक, ये बकासुर है नाम इसका, और ये देख रहा है कृष्ण की ओर। सारे ग्वाल बाल जो है वो देख बड़े घबरा गए इसको देखकर, और बकासुर ने क्या किया, वो भी कृष्ण का ही कंस का ही दूत था। वास्तव में ये बकासुर जो है ये पूतना का छोटा भाई था, और वैसे भी पूतना के वध के बाद बड़ा क्रोधित हो गया था कि मेरे बहन का वध कर दिया इस कृष्ण ने, तो कृष्ण को मुझे खाना ही चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो बकासुर ने तुरंत अपनी चोंच से कृष्ण भगवान को पकड़ लिया और अंदर ले लिया। तो देखिए बकासुर का सौभाग्य क्या था, भगवान श्री कृष्ण खुद उसके शरीर के अंदर चले गए। हम हमेशा चाहते कि कृष्ण भगवान को हमारे हृदय में ले लें, लेकिन कृष्ण भगवान खुद चलते चलते उनके हृदय में चले गए, अंदर चले गए। और जैसे अंदर चले गए तो बकासुर ने मुंह बंद कर लिया, लेकिन तुरंत कृष्ण भगवान के दिव्य शरीर के तेज के प्रभाव से इतनी गर्मी होने लगी बकासुर के शरीर के अंदर, कि बकासुर को तुरंत उल्टी करना पड़ा और कृष्ण भगवान को बाहर निकालना पड़ा। वैसे तो कृष्ण भगवान का शरीर कमल के समान कोमल है, लेकिन जो असुर होते हैं, जो कृष्ण भावना में नहीं होते हैं, जो कृष्ण से द्वेष करते हैं, कृष्ण भगवान को वह ना तो बाहर से सहन कर सकते हैं ना अंदर से सहन कर सकते हैं। हमने ये तो देखा कि किस प्रकार से बाहर से सहन नहीं कर सकते, अंदर से कैसे सहन नहीं कर सकते, ये बकासुर की लीला से हम समझ सकते हैं। तो गरम गरम ऐसे लगा थे अग्नि से भी ज्यादा गरम है, बकासुर को समझ में नहीं आया कि क्या है। वैसे तो कृष्ण भगवान का शरीर मिश्री या शक्कर से भी ज्यादा मीठा है उनका शरीर, लेकिन जब बकासुर के शरीर के अंदर गए श्री कृष्ण, तो ऐसा कड़वा लगा और गरम लगा कि बकासुर को भी सहन नहीं हुआ। हम देखते हैं कि जैसे बच्चे कुछ खाते हैं, अगर कोई तीखा हो कड़वा हो तो क्या करते हैं बच्चे, तुरंत उस चीज को थूक डालते, सहन नहीं कर सकते। तो बकासुर इतना बड़ा असुर था, योगी था, क्योंकि उसने अपने रूप को ऐसे बदल दिया था, एक बतख का रूप धारण कर लिया था, तो कृष्ण भगवान को अंदर सहन नहीं कर पाया, तुरंत उसको बाहर निकाल दिया। और जब देखा कि कृष्ण को कुछ हुआ नहीं है, तो बकासुर को बड़ा क्रोध आया, तो अपनी चोंच से कृष्ण भगवान को मारने का प्रयास किया। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जैसे एक बालक एक घास के तृण को लेकर ऐसे दो टुकड़े कर देता है, फाड़ डालता है एक घास को, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में ही बकासुर के दो चोंच के दो हिस्से पकड़ लिए और आसानी से फाड़ दिया, जैसे बालक एक तृण को फाड़ देता है। और इस अद्भुत दृश्य को देखकर ग्वाल बाल ताली मारने लगे, वाह 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 कृष्ण क्या काम किया, बढ़िया काम किया। और ये बकासुर जो है वास्तव में बहुत खतरनाक असुर था, देवतागण भी उसे घबराते थे। तो देवताओं ने भी ऊपर से फूलों की वर्षा, मलिक पुष्प की वर्षा करना आरंभ किया और अप्सरा नृत्य करने लगे, बाजा बजाने लगे और जैसे अक्सर होता है, और बादलों के ऊपर से फिर पीछे से देखने लगे कि क्या चल रहा है। वो सारे कृष्ण लीला का दर्शन किया करते थे, गंधर्व किन्नर लोक के सारे जो निवासी हुआ करते थे। इस प्रकार से बकासुर का वध कर दिया कृष्ण भगवान ने बहुत आसानी से। उनके लिए तो एक खेल था, जैसे रूटीन मानी हर रोज, जैसे अभी लोग उठते हैं फिर मुंह हाथ धो लेते हैं, स्नान करते हैं और फिर भोजन करते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, जैसे रूटीन काम हो जाता है लोगों को, वैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए असुरों को मारना एक रूटीन हो गया था, काम हो गया था। सुबह उठे, माता यशोदा के हाथ वो प्रसाद ग्रहण किया और फिर गायों को चराने के लिए ले जाते थे, दो तीन असुरों को मार देते थे और फिर वापस वहां खेल खेल कर वापस आ जाते थे शाम को। तो कृष्ण भगवान के लिए दो तीन असुर को रोज होना तो था ही। और इस प्रकार से बकासुर का वध जब हो गया तो सब ग्वाल बाल शाम को लौट गए। और जब शाम को लौटे वहां पर तो सारे जोर जोर से गीत गाते जा रहे थे, और जब ब्रजवासियों को पता चला तो सारे कवि अपने काम में लग गए। रोज उनका काम होता था, कवि गीतकार जो है संगीतकार हमेशा तैयार रहते थे कि आज क्या लीला होगी कृष्ण की, क्योंकि ग्वाल बाल आकर सारे रिपोर्ट दिया करते थे। तो वहां पे कोई अखबार की आवश्यकता नहीं होती थी, उनकी खबर जो है जो भी बातें चलती थी केवल कृष्ण और बलराम की लीला के बारे में बस। लेकिन यहां अभी हमारे समाज में तो चर्चा करने के लिए बहुत सारे अन्य चीजें हैं, खास करके आज के समय। और इस प्रकार से ब्रजवासी जो है वो और किसी भी बारे में चर्चा नहीं करते थे सिवाय कृष्ण बलराम की लीला। रोज हमेशा उत्साह उत्सुकता रहती थी कि आज क्या रिपोर्ट लेकर आएंगे ग्वाल बाल। अच्छा, कृष्ण इस असुर का वध ऐसे किया, उस असुर का वध वैसे किया, और फिर ये गीतकार और कवि सुंदर सुंदर कवि बनाते और गोपगण और गोपियां इनको मधुर स्वर में गाया करते थे। तो जब बकासुर का वध हुआ और रिपोर्ट जब पहुंच गई तो फिर से गोपगण सोच रहे थे, गोपियां सोच रही थी कि क्या अद्भुत बात है, ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण बलराम ऐसे लीला करते हैं, बार बार मृत्यु के मुख से मानो के लौट कर आते हैं, ये अवश्य ऐसा है। नंद महाराज सोचने लगे, अपने मासूम हृदय से, अपने भोले भाले हृदय से सोचने लगे कि वास्तव में ऐसे हुआ होगा कि कृष्ण ने पिछले जन्म में इन असुरों का वध किया होगा, इसलिए ये असुर जो है इतने ईर्ष्यालु हैं, इसलिए इस जन्म में आकर कृष्ण भगवान की हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे कृष्ण के ऊपर नारायण का, विष्णु का आशीर्वाद है, इसलिए इतना मासूम बच्चा है, इसलिए कोई इतना शुद्ध है, इसलिए कोई भी असुर इसको खत्म नहीं कर सकता है। ये असुर कैसे हैं? जैसे मक्खी हैं। और कृष्ण कैसे हैं? जैसे अग्नि है। और ये मक्खियां जो हैं ये कृष्ण की ओर आ रही है, अग्नि रूपी कृष्ण रूपी अग्नि के पास आ रही हैं। तो जब मक्खियों के बीच में और अग्नि के बीच में युद्ध होता है तो किसका विजय होगा? अग्नि का ही तो विजय होगा। मक्खियां भले अग्नि को कैसे हरा सकती हैं? तो इसी प्रकार से ये सारे जो असुर हैं ये कृष्ण को भला कैसे खत्म कर सकते हैं? और हां, गर्ग मुनि ने तो ये कहा था, और जो भी गर्ग मुनि ने कहा था वो प्राय हर एक शब्द ठीक निकल आ रहा है। वसुदेव ने जो कहा था वो भी हर एक शब्द ठीक निकल आ रहा है। तो उस प्रकार से नंद महाराज ने गर्ग मुनि की बातें के बारे में स्मरण किया। गर्ग मुनि ने यह छुपा रखा था कि वास्तव में कृष्ण भगवान साक्षात नारायण है। गर्ग मुनि बहुत विद्वान थे, वेदों में विद्वान थे, वेद शास्त्र पूरी तरह से जानते थे, ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण थे, और वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये साक्षात नारायण है। लेकिन उन्होंने बात इतने खुले तरह से कही नहीं नंद महाराज से। उन्होंने केवल इतना कहा कि ये जो आपका बच्चा है इसके अंदर ऐसे ऐश्वर्य हैं ऐसी शक्ति है कि मानव वो नारायण के समान है, नारायण की तरह है। तो ठीक उन्होंने बताया भी कि कृष्ण नारायण के नारायण है और नहीं भी। तो ऐसे तरह से गर्ग मुनि ने नंद महाराज को समझाया कि झूठ भी नहीं बोला, पूरा सच भी नहीं बोला। तो इस प्रकार से नंद महाराज तो बहुत खुश हुए थे उस समय सुनकर, लेकिन अपने हृदय में इतना तीव्र प्रेम था कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रति कि उन्होंने इतना ही सोचा कि देवता प्रसन्न होंगे कृष्ण के ऊपर या भगवान नारायण प्रसन्न होंगे, इसलिए ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहे हैं कभी कभी। और ये कृष्ण के कार्य नहीं है, ये केवल देवता और भगवान के कार्य है कि कृष्ण ऐसे असुरों के मुख से बच रहे हैं। तो इस प्रकार से भोले भाले नंद महाराज हमेशा यही सोचते थे कि ठीक है, ये कहां भगवान हो सकते हैं, ये तो हमारे बच्चे हैं, ये तो हमारा बालक है। जब भी रात को बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो घबरा के मेरे पास आता है, ये थोड़े भगवान हो सकता है, ये कौन सा भला भगवान हो। तो जब बादल से घबराता है तो बड़े बड़े असुरों का वध कहां से करेगा, ये थोड़ी भगवान हो सकता है। असुरों का वध हुआ है तो केवल भगवान की कृपा से हुआ है। और फिर असुरों का वध भूल जाते थे और कृष्ण बलराम को साथ में लेकर फिर वो कृष्ण लीला करना आरंभ करते थे। ऐसे ही ब्रजवासियों के दिन बीत जाते, रात बीत जाती, इनका जीवन ही बस यही था, कृष्ण लीला सुबह से रात तक। और जब कृष्ण भगवान बलराम जी भी बाहर चले जाते तब भी कृष्ण लीला चालू रह जाती। संगीतकारों को, कवियों को बहुत काम था, उनको कोई काम की कमी नहीं थी। हमने देखा, एक बार हम आ रहे थे तो एक व्यक्ति थे जो संगीतकार थे और नाट्य लीला भी करते थे, नाटक का काम भी करते थे। कहते थे अभी आजकल काम कम हो गया है क्योंकि आजकल कुछ और कोई बुला नहीं रहे, डायरेक्टर्स वगैरह बुला नहीं रहे हैं, ऐसे ट्रेन में हमें व्यक्ति मिल रहे थे। लेकिन ऐसे संगीतकारों को, नाटककारों को वृंदावन में कोई कमी नहीं थी काम की, क्योंकि कृष्ण भगवान और बलराम जी की लीला इतनी हुआ करती थी कि सुबह से रात तक वो व्यस्त रहते थे, या तो कवियां बनाने में या भजन बोलने में, गीत गाने में हमेशा व्यस्त रहते थे। और इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं कि वृंदावन में कैसा वातावरण हुआ होगा। सुबह शाम दिन भर कृष्ण लीला गूंज रही है सब जगह, क्योंकि कृष्ण ही सारे ब्रजवासियों के केंद्र थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आशीर्वाद फिर से देते हैं कि जो ऐसे कृष्ण लीला का श्रवण करते हैं बहुत ही जल्दी ब्रजवासियों की तरह वो दिव्य आनंद की प्राप्ति करेंगे। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हालांकि इतने कष्ट आते जा रहे थे, इतने असुर आते थे वृंदावन में, फिर भी सारे ब्रजवासी गण त्रिविध ताप से हमेशा मुक्त रहा करते थे। त्रिविध ताप कौन से हैं? अधिभौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश। इन नाना प्रकार के संसार के जो कष्ट होते हैं इनसे हमेशा मुक्त रहते थे, दिव्य आनंद की अनुभूति करते थे हर क्षण। सद्यो हृदय अवरुद्यते तकृति शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत के दूसरे ही श्लोक में व्यासदेव जी का आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करता है उसके हृदय में भगवान साक्षात बहुत ही जल्द प्रकट होंगे और त्रिविध ताप नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्यते तकृति शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। तो ये आशीर्वाद है सुखदेव गोस्वामी का, वेद व्यास जी का, सारे आचार्यों का कि जो कृष्ण भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे सारे दुख, सारे संकट, सारा शोक मोह भय हृदय से नष्ट हो जाएगा। अनर्थ पशुमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। व्यासदेव जी भी बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति योग करता है तो क्या होता है, अनर्थ उपशमम, अनर्थ जो सारे हृदय में है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने चक्रे सात्वत संहिता, कि उन्होंने ये जो संहिता है ये जो श्रीमद् भागवत है इसकी रचना की। किस लिए? ताकि सारे जो संसार में भौतिक कष्टों से पीड़ित लोग हैं उनके हृदय में आनंद हो और संसार का प्रभाव बिल्कुल नष्ट हो। देखिए कृष्ण लीला का प्रभाव इतना होता है, इसलिए बताते हैं कि जब कृष्ण लीला में हम सुनते हैं, हम क्लास में बैठते हैं और जब सो नहीं रहे होते हैं तो उस समय जब हम कृष्ण लीला के ध्यान दे रहे होते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, संसार के कष्टों को भूल जाते हैं। लेकिन जिस क्षण हमारा ध्यान कृष्ण लीला से दूर चले जाता है, भले हम क्लास के अंदर क्यों ना बैठे हों, लेकिन अगर हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है तो संसार के त्रिविध ताप आक्रमण करते हैं। लेकिन जितने समय तक हम कृष्ण लीला में कृष्ण लीला का ध्यान से श्रवण कर रहे होते हैं तो उस समय त्रिविध ताप को भूल जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है कि सुहोत्र नाम का गंधर्व था, गंधर्व लोक का निवासी था और दुर्वासा मुनि का शिष्य था वो। उसके दो भाई थे, उनको भी शाप मिला था। कैसे शाप मिला चर्चा करते हैं आगे। लेकिन ये दो भाई जो थे सुहोत्र नाम के गंधर्व के, वो भी उनको भी शाप मिला कृष्ण लोक कृष्ण लीला में असुर बनने के लिए, और वो बने आगे चल के प्रलंबासुर और केशी। इनकी लीलाएं जब हम चर्चा करेंगे तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो खैर, ये वास्तव में कृष्ण भक्त थे, दुर्वासा मुनि के शिष्य थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने पुष्कर तीर्थ में बहुत बड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद में वो चित्र सरोवर नाम के सुंदर सरोवर में वहां कमल पुष्प तोड़ने गए कृष्ण को अर्पण करने के लिए। लेकिन वहां जो सुंदर रम्य वातावरण था चित्र सरोवर में, वो शिवजी के सुरक्षा के भीतर था। तो शिवजी के जो दूत थे, जो सेवक थे, उन्होंने सुहोत्र उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके शिवजी के सामने लाए कि ये आपके चित्र सरोवर में कमल पुष्प तोड़ रहे थे। जैसे किसी के बगीचे में जाके आप अगर कुछ तोड़ेंगे तो उसके चौकीदार आके आपको गिरफ्तार कर देता है, उसी प्रकार से शिवजी के सेवकों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, शिवजी के पास ले लिया। शिवजी जानते थे कि इन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए किया है, इसलिए शिवजी ने उनको बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया, सम्मान दिया, लेकिन कहा मैं मजबूर हूं, आपने ये कमल पुष्प तोड़े हैं तो मुझे शाप देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वैसे पार्वती देवी का व्रत है कि मैं रोज इस चित्र सरोवर के 1000 पुष्प मैं कृष्ण भगवान को अर्पण करूंगी और 100 दिन के लिए अर्पण करूंगी लगातार। तो 1000 × 100 कितना हुआ? 1,00,000। तो शिवजी ने कहा कि ठीक 1,00,000 पुष्प इस चित्र सरोवर में है और अभी आपने पुष्प निकाल दिए तो माता पार्वती का व्रत जो है वो टूट गया, इसलिए शाप तो आपको मिलना है। हालांकि वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की सेवा के लिए ही वो कमल पुष्प तोड़ रहे थे, लेकिन उनको शाप मिला कि असुर का शरीर मिले और फिर वो आए बकासुर के रूप में। अब ये प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे थे तो असुर का शरीर क्यों मिले? तो वही बात है कि कृष्ण की लीला को आगे बढ़ाने के लिए। अगर असुर न होते कोई तो कृष्ण लीला कहां से होती? कृष्ण असुरों का वध कैसे करते? किसी न किसी व्यक्ति को तो असुर बनना है, किसी न किसी जीव को ऐसे शरीर में तो जाना है। इसलिए कृष्ण भगवान की ही इच्छा थी वास्तव में कि ये सारे गंधर्व हैं वो उनकी लीला में असुर के रूप में आए, कृष्ण भगवान उनका वध करें और वध करने के बाद उनका उद्धार कर दें। इस प्रकार से सुंदर रूप से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, कुमार लीला चलती गई चलती गई। और वैसे जैसे 5 साल की उम्र होने को आई तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने और एक बड़े असुर का वध किया जिनका नाम था, कोई कह सकते हैं? अघासुर। और अघासुर का वध कैसे किया वो हम अगली बार देखेंगे, तो थोड़ा सस्पेंस रखेंगे। तो अभी कथा यहीं पर विश्राम कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये बात बताना भूल गए कि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि बकासुर जो है किस अनर्थ के प्रतीक हैं। छल कपट और धोखेबाजी की जो प्रवृत्ति हमारे हृदय में होती है उसके प्रतीक हैं, जिससे हम हमेशा कोई ना कोई टेढ़ी चाल खेलते हैं जीवन में। भक्त को चाहिए कि वो सीधा रहे, सरल रहे। जैसे ब्रजवासी थे, कितने सरल थे, उनके हृदय में कोई छल कपट की भावना नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल के आधुनिक काल में हम देखते हैं कि अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। बाहर के संसार के लिए हम कुछ अपने आप को पेश आते हैं, जैसे कि मानो हम ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन अंदर से कोई और ही विचार चल रहे हैं। बड़े लोग जो होते हैं, बड़े मतलब उम्र में बड़े, जो बचपन से ऊंचे चले होते हैं, उनकी भावना क्या होती है? मन में सोचते कुछ है, बोलते कुछ दूसरा है, और करते कुछ तीसरा ही है, है ना? ये समाज ही, बड़ों का समाज ही ऐसे हो गया है कि लोगों को ऐसे करना आदत पड़ जाती है, और बड़े भी बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, है ना? ऐसा छल कपट की भावना, झूठ बोलने की भावना सिखाते हैं। फोन आया, बच्चे को क्या कहते हैं? बोल दो कि मैं घर में नहीं हूं। बच्चा कहेगा, पिताजी बोल रहे हैं वो घर में नहीं है। अरे मूर्ख, तुमने ऐसा क्यों कहा? आप ही ने तो कहा था कि कहो कि मैं घर में नहीं हूं। तो बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। वो साफ साफ जो मन में है सो बोल देते हैं, सीधा सीधा आके कुछ ऐसा बोल देते हैं। हमेशा माता पिता को होशियार रहना पड़ता है कि आज बच्चा आके मेरा क्या करे, मेरा नाम खराब कर दे किसी और व्यक्ति के सामने। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं, कभी कभी बड़ा खतरा भी रहता है उनसे, क्योंकि उनका हृदय बड़ा सौम्य रहता है, बड़ा शुद्ध रहता है। तो इसी तरह से ब्रजवासियों के हृदय थे, लेकिन बकासुर वो छल कपट की भावना जो है वो हमारे हृदय में है। इसलिए भगवान से हमें कहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा याचना करनी चाहिए कि कृपा करके हमारे हृदय में जो टेढ़े मेढ़े चलने की जो चाल है, जो प्रवृत्ति है, छल कपट की जो भावना है, उसको कृपा करके आप आधे में तोड़ मोड़ के आप उसको बाहर फेंक दीजिए। ये बकासुर नाम का जो असुर है, अपने चोंच से हमें बहुत परेशान कर रहा है। हम सरल तरीके से जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये प्रवृत्ति इतनी तेज है, तीव्र है, कि हमें टेढ़ी चाल चलाने के लिए वो मजबूर कर देता है। तो कृपया इस बकासुर नाम के जो असुर है हमारे हृदय में, उसको आप खत्म कर दीजिए। हरे कृष्णा।
हरे बोल। आपने अभी कहा कि भक्त को सरल होना चाहिए और छल कपट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भौतिक जगत में देखते हैं कि जब हम भौतिक लोगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, उनका जो भी धन है या उनकी जो भी वस्तु है वो हम भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, हम सीधा मांगे तो नहीं देते हैं, तो उस वक्त हम छल कपट से उनके पास कुछ लेके उनका भी भगवान में सेवा में लगाए, इसलिए कुछ करते हैं, तो अच्छा है या बुरा है?
उसको छल कपट नहीं कहते हैं। जब आप किसी के भलाई के लिए काम करते हो, किसी के उद्धार के लिए काम करते हो, किसी के हित के लिए काम करते हो, तो उसको छल कपट नहीं कहते हैं। जैसे कभी कभी माँ को बच्चे से झूठ बोलना पड़ता है, बच्चे को इधर उधर कुछ बहकावे में डालकर दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा दवाई नहीं लेगा, बच्चा खाएगा नहीं, तो खिलाने के लिए भी क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मैं बाद में यहां ले जाऊंगा, तो मैं वहां ले जाऊंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, तो मना कर किसी न किसी तरह से उसे भोजन खिलाना पड़ता है, दवाई दिलाना पड़ता है। बच्चे के भलाई के लिए ही कर रहे हैं, नहीं तो बच्चा सुनता नहीं है। कभी कभी करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि ये यही एक नियम बनाना चाहिए, लेकिन जब बच्चा नहीं मानता है तो कभी कभी ऐसे कर लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार से जो कभी कभी संसार में लोग होते हैं, भगवान की ओर उनका झुकाव नहीं रहता है, हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन संसार में इतने अटके हुए हैं कि भगवान के चरण कमलों में आश्रय नहीं ले पा रहे हैं। तो उनकी सहायता करने के लिए अगर कभी कभी ऐसे उनको भगवान में सेवा में लगाया जाए तो बुरी बात नहीं है, लेकिन सामने से उनको कहना चाहिए कि हम आपकी आपका जो धन है भगवान की सेवा में ही लगा रहे हैं, इससे आपका लाभ होगा। हम आपको भगवान की सेवा में लगाने के लिए आए हैं, न कि केवल आपसे कुछ लेने के लिए आए हैं। आपकी इसमें आपका ही भला इसमें होगा, ऐसे समझा कर अगर हम उनको उनको सेवा में लगाएं तो फिर और भी अच्छा होगा, ताकि वो भी समझ ले कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है। ठीक है।
और एक सवाल है कि आपने कहा कि भक्ति निदान सरस्वती महाराज कहते थे जो भी युवावस्था में या किशोर अवस्था में उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है तो उनको सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी सेवा करने की अगर उनको मालूम ही नहीं है भगवान के बारे में सेवा करने का हमारा अच्छा होता है, वो सेवा नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम किस प्रकार से उनको सेवा में लगा सकते हैं?
ये हमारे बुद्धि का सवाल है। बुद्धि कृष्ण की सेवा में हमें लगानी चाहिए कि कैसे दूसरों को कृष्ण में सेवा में लगाया जाए। आजकल बुद्धि लोग अलग अलग चीजों में लगा रहे हैं, लेकिन बुद्धि लगानी चाहिए इस चीज में, खुद अपने आप को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना चाहिए और दूसरों को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो जो उम्र में कम होते हैं उनको कैसे कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, इसलिए योजना बनानी पड़ेगी। तो ऐसे बनाकर, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। कृष्ण की सेवा अनंत है, बड़े से बड़े असुरों को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेवा में लगाया। प्रभुपाद जी की लीला में देखते हैं कि कैसे कैसे लोगों को उन्होंने अपनी सेवा में लगा दिया। तो ये एक कला की बात है, कैसे कृष्ण की सेवा में सभी को लगाना चाहिए। तो चाहे कम उम्र वाले हो, बड़े उम्र वाले हो, ऐसा नहीं है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है उम्र में तो उसकी इंद्र तृप्ति की भावना खत्म हो जाती है। उनको भी सेवा में लगाना बड़ा कठिन होता है, ऐसा नहीं कि केवल युवकों को सेवा में लगाना कठिन होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती इसी बात को कहते हैं कि बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, युवा अवस्था में एक प्रकार की समस्या होती है जो कि उन्हें कृष्ण की सेवा में आने से रोकती है, लेकिन उम्र बढ़ जाती है तब अलग प्रकार की समस्या होती है जो कि उनको रोकती है वहां आने में। समस्या हर कदम में रहती है, केवल समस्या का रंग बदल जाता है। इसलिए हमारे बुद्धि का प्रयोग करके हमें देखना चाहिए। येन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, किसी न किसी प्रकार से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, किसी न किसी प्रकार से लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि उनके भलाई के लिए हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बुराई के लिए नहीं कर रहे। ठीक है। तो पहले माता पिता को प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए, माता पिता को कृष्ण भक्ति क्या है समझ लेना चाहिए, खुद आचरण करना चाहिए। अगर खुद माता पिता सही ढंग से, प्रामाणिक ढंग से भक्ति नहीं कर रहे हैं और उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है, उनकी आदतें भी ठीक नहीं है, तो बच्चे तो यही देखेंगे और बच्चे वही करते रहेंगे। यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसे जैसे आदरणीय लोग समाज में करते हैं वैसे वैसे बाकी जनता जो है वो उनका नकल करेगी। तो बच्चे किन की नकल करेंगे, जो बड़ों को देखते हैं। तो इसलिए बड़े लोग जो हैं वो अगर अच्छी तरह से भक्ति करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो बच्चे भी वैसे करेंगे। हमने देखा एक व्यक्ति हमसे बात कर रहे थे कि हमारा लड़का कॉलेज में गया है, अभी सिगरेट पीना शुरू कर लिया है। तो हमने कहा आप सिगरेट पीते हैं? कहा पीता हूं। तो मैं कहा हरे कृष्ण कह दिया उनसे, हमने कह दिया कि आप चलो कोई बात, आपसे बात करके क्या फायदा है, खुद सिगरेट पीते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा बच्चा सिगरेट पीता है, आपको देखकर वो नकल करेगा। आप सिगरेट पीना बंद करो, फिर आपको कोई अधिकार होता है कि उसको बताने के लिए कि आप मत, तुम मत पियो, लेकिन खुद पीना चाहते हैं लेकिन बच्चों को कहते मत पियो, तो कैसे होगा? तो ये है संसार में समस्या, बड़े लोग ही नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब बड़े लोग माता पिता जब जान जाएंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, तब सब ठीक हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं, तरुण पीढ़ी के बाद जहाँ है तब तक तो उनकी उम्र बढ़ चुकी होती है। तब तक आदमी बच्चा जो 15, 16, 18, 20 साल का हो जाता है तब तो वो समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब बचपन में तो उसके लिए आदर्श तो है ही, माता पिता और जो बड़े परिवार में लोग हैं वही है। जब बच्चा कॉलेज वगैरह में जाने लगता है तो खुद उसकी बुद्धि आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर अगर फिर भी माता पिता कुछ गलत काम कर रहे हो फिर वो सही मार्ग पे चल सकता है। कितने ही उदाहरण ऐसे हैं। लेकिन जब बहुत छोटा होता है तो ये करना मुश्किल है। तो तरुण पीढ़ी मतलब जो कम से कम 13 जो कॉलेज में स्कूल में जा रहे हैं, कर 15-16 साल के कम से कम हो, तो ऐसे लोग समझ सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने माता पिता को सुधारते हैं, हमारे भक्त समाज में ऐसे कितने ही है। माता पिता मांस खा रहे होते उनको बंद करा देते हैं, पिताजी शराब पीता है शराब उसका बंद करा देते हैं। कितने उदाहरण, जब बच्चे भक्त बन जाते हैं फिर उनके माता पिता को भक्त बनाते हैं, कितने उदाहरण है।
ऐसे मध्य प्रदेश के बॉर्डर में राजस्थान के पास जो एक मंदिर है भगवान कृष्ण का, उसका नाम याद नहीं आ रहा, और बहुत रिच मंदिर है वहां पर। वहां का जो एरिया है सब ओपियम अफीम का है, वहां के लोग अफीम पैदा करते हैं और उससे जो है वो मतलब पहले ही भगवान के जो है मनोती मनाते हैं कि हमें जो है अफीम जो है ब्लैक में बेच करके, क्योंकि उसका लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, मतलब बुरा काम ही है ना, वो करके जितना धन मिलेगा उसमें आधा आपको चढ़ाएंगे और उनकी इच्छा पूरी होती है। क्या ये उचित है क्या ऐसा, मतलब गलत काम करने के लिए भगवान से जो है वो करते हैं। इसी तरह कई लॉटरी जो है जुआ खेलते हैं उसमें भी कई ऐसे कहते हैं कि मुझे इसमें इतना वो जुआ जीत जाऊंगा तो उसमें इतना आधा पैसा आपको भगवान को चढ़ाऊंगा, क्या ये उचित है, वो भी एक छल कपट का ही है।
ये तो एक व्यवसाय हो गया ना, ये तो भक्ति का कार्य नहीं है। कोई कहता है ऐसी कोई भावना होती है तो इससे कोई भक्ति का कोई संबंध नहीं है, एक व्यवसाय है, पार्टनर बना दिया है उन्होंने भगवान को, हम चलेंगे आप करो मुझे सफल बनाओ मैं आपको इतना परसेंट दे दूंगा बस। तो इसमें कोई चर्चा की क्या बात है। ये लोग तो जब तक शुद्ध भक्त के संबंध में नहीं आएंगे तब तक ये जो ऐसी भावना है व्यवसाय की भावना, आध्यात्मिक जीवन प्रगति नहीं कर पाएंगे।
हमने एक 2-3 दिन के पहले देखा था कि शुकदेव महाराज और सुतो गोस्वामी के बारे में कि शुकदेव स्वामी ने परीक्षित महाराज को भगवत कथा सुनाई और वही टाइम में सुतो गोस्वामी ने वो सुन ले लिया और बाद में जो महिमेश्वर अरण्य में उसे सुतो गोस्वामी ने सबको बताया तब बलराम जी जो है वो परीक्षित महाराज के पहले आ गए थे और उन्होंने सुतो गोस्वामी ने उनको कैसा बताया वो टाइम में जो भागवतम जो है सुनाया।
नहीं समझा नहीं।
शुकदेव स्वामी के जब ने परीक्षित महाराज को ये भागवतम सुनाई वही टाइम में सुत गोस्वामी ने वो सुन लिया था और हम वो जो कथा सुनी बलराम के बारे में तो बलराम जी वहाँ आए और जो सुत गोस्वामी के जो पिताजी है
जब रोमहर्षण सूत का की हत्या की बलराम जी ने तो उस समय परीक्षित महाराज को उपदेश सुखदेव गोस्वामी ने ही दिया था उस समय और उस समय सुत गोस्वामी को बलराम जी ने बिठाया व्यासासन पर रोमहर्षण। तो उस समय पुराणों की चर्चा चलती थी, श्रीमद भागवत की चर्चा आगे चल के हुई। जिस समय रोमहर्षण सूत को मार दिया बलराम जी ने और सुत गोस्वामी को बिठाया उग्रश्रवा सूत, तो पुराणों की कथा जारी रखी जो उनके पिता कर रहे थे और श्रीमद भागवत की कथा थोड़ी देर बाद हुई जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से की, वहां सुत गोस्वामी थे। फिर उसके बाद में सुत गोस्वामी लौट कर आए नैमिषारण्य जहां यज्ञ चल रहे थे, हजार सालों से चल रहे थे, तो वहां आकर फिर उन्होंने वो कथा फिर से आरंभ कर दी।
आपने कहा लेकिन जो परीक्षित महाराज थे वो भगवान श्री कृष्ण के पोते थे, उस वक्त जब भागवत चल रहा था तभी बलराम जी उधर आए थे तो जो महाभारत होने के बाद या उनके होने के बाद होना चाहिए था, तो उसी वक्त कैसे शुद्ध गोविष्य ने
श्रीमद भागवत का प्रवचन जब चल रहा था, सुखदेव महाराज जब दे रहे थे परीक्षित महाराज को, तो उस समय बलराम जी वहां नहीं आए। बलराम जी तो अपने धाम चले गए थे। ये नैमिषारण्य की बात है, जब रोमहर्षण सूत ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे थे, और उस समय जब उन्होंने रोमहर्षण की हत्या की और उग्रश्रवा सूत को बिठाया व्यासासन पर, तो उस समय अन्य पुराणों की कथा चल रही थी, और बाद में चलकर महाभारत का युद्ध हुआ, और फिर युधिष्ठिर महाराज को राज सिंहासन की गद्दी मिली, फिर बाद में वो भी वनवास में चले गए, परीक्षित महाराज को सिंहासन पर बिठाया, फिर परीक्षित महाराज को शाप मिला, फिर सुखदेव महाराज ने उनको उपदेश दिया भागवत का। उस समय सूत गोस्वामी नैमिषारण्य से आए थे इस प्रवचन को अटेंड करने के लिए। फिर इसके बाद में लौट कर आए नैमिषारण्य, फिर से उन्होंने अपना जब प्रवचन आरंभ किया, तो इस समय भागवत के ऊपर प्रवचन दिया। इसके पहले अन्य पुराणों के ऊपर कथा चल रही थी।
और एक टिप्पणी है, कैसे अभी कहा था कि माता पिता ने कैसे अपने बच्चों को करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी कहते थे, जो उनके पिता थे बचपन से ही उनको सुबह में उनको भगवान की आर्चवीर का दर्शन करने के ले जाते थे, उनको मृदंग सिखाया था, और रथ यात्रा का जो प्रभुपाद ने बाद में पूरी जग भर फैलाया, तो उसको भी जगन्नाथ का रथ यात्रा उनके पिताजी ने उनको सिखाया था। इस प्रकार से अपने पिताजी से ये प्रभुपाद ने ये सब सीखा।
दशरथ प्रभु आपको बता रहे है। सही बात है, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा महत्व होता है माता पिता बनने का। ऐसा वातावरण हो, जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही बच्चा बढ़ जाता है।
हरे कृष्णा, आपने बोला कि भक्त का हृदय बहुत सरल होना चाहिए, और ऐसा सरल अगर भक्त कोई रहे तो उसको बाहर के लोग उसको छल कपट से फंसाते हैं, और भक्त भी कभी कभी फंसाते हैं, तो उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए और भक्त को कैसा रहना चाहिए?
देखिए, सरल रहना का मतलब ये नहीं कि हम मूर्ख बने, है ना? सही बात है ना। जैसे नारद जी के एक शिष्य थे ना सांप, तो सांप को कहा कि देखो तुम हमेशा जाके सबको काटते हो, जहरीला हो, जहरीला सांप था, हर जगह जाके काटते हो, क्योंकि सांप की आदत होती है कि बिना वजह जाके किसी को काटे। तो नारद जी ने कहा अब तुम मेरे शिष्य बन गए हो, भक्ति मार्ग में आए हो, तो अभी तुम काटो मत किसी को। तो सांप ने हां कह दिया। तो क्या हुआ, जब सांप ने कुछ नहीं किया, जब भी कोई लोग आते थे तो चुपचाप रह जाता था, तो लोग आके लकड़ी से लाठी से मार मार के उसके बेचारे की बुरी दशा कर दी। तो अगली बार जब नारद जी ने उनको देखा, कहा कि सब जगह बड़े बड़े घाव हैं, खून बह रहा है, अरे ये क्या हो गया तुम्हें, मैंने आपके आदेश का पालन किया, मैंने किसी को काटा नहीं। तो फिर नारद मुनि ने कहा, अरे मैंने कहा था कि किसी को काटो नहीं, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि करके किसी को जब कोई आक्रमण करने आए तो अपनी रक्षा नहीं करना ऐसे करके, ये तो मैंने नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा कि काटो नहीं। जैसे उसी प्रकार से हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए भले कोई कदम उठाने पड़े, घर को ताला लगाना है अपनी सुरक्षा के लिए, जो सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने हैं अपने लिए, अपने बचत के लिए, अपने परिवार के लिए, वो करें, लेकिन दूसरों को के ऊपर अत्याचार अन्याय करके करें वो ठीक नहीं है। अपने आप की सुरक्षा की जो आवश्यक है करें, दूसरों को धोखे में न डालें, लेकिन दूसरे जो धोखेबाज हैं वो हमारा फायदा ना उठाएं हमारे सरलता का, उसके लिए हमें सुरक्षित रहना चाहिए, चौकन्ने रहना चाहिए, हमारे बुद्धि तेज रहनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे पास जो भी कुछ है वो कृष्ण की सेवा के लिए ही है। तो अगर इस प्रकार से हमारा धन चुरा ले जाएंगे, वो धन हम कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कृष्ण का धन ही वो चोरी करते हैं, तो कृष्ण के संपत्ति को की सुरक्षा के लिए हमें अच्छी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। ठीक है,
तब ये माया अटैक करती है या कर्म के अनुसार हम दूर जाते हैं?
वैसे तो दोनों का प्रभाव होता है, माया का प्रभाव होता है, माया का प्रभाव तो हर समय है। जैसे जो बाहर जर्म्स होते हैं ना, कीटाणु होते हैं, हवा में हमेशा होते हैं, लेकिन कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये एलोपैथी और आयुर्वेद में अंतर होता है। एलोपैथी क्या करते हैं, जब बीमारी होती है ना तो वो को ऐसी दवाई देते हैं जिसको शरीर के अंदर जो कीटाणु उनको मार डालते हैं। हिंसा का ये हिंसा की पद्धति है एलोपैथी, अंदर में कीटाणु को मार डालते हैं दवाई से। लेकिन आयुर्वेद दर्शन क्या कहता है, आपको बीमारी कीटाणु की वजह से नहीं हुई है, कीटाणु तो पहले से भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, तो ऐसा क्यों है कि आपको अभी बीमारी हुई है, कीटाणु की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि आपके शरीर में आपके आदतों में आपके जीवन के रहन सहन के ढंग में दिनचर्या में कोई गड़बड़ है, आपके शरीर में कमजोरी आ गई, इसलिए कीटाणु जो है आपको हरा सके, बीमारी हो गई। तो आपके शरीर को ठीक करने के लिए आपके जो दोष अंदर हैं, जो दोषों में जो संतुलन जो नष्ट हो गया है उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद काम करती है। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी जैसे कीटाणु सर्वव्यापी है सब जगह है, उसी प्रकार से माया भी सर्वव्यापी है, हर क्षण माया का प्रभाव रहता है, जहां भी जाए माया का प्रभाव रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर से हम जब कमजोर रहते हैं, माला नहीं करते, साधना अच्छी तरह से नहीं करते, वैष्णव अपराध करते हैं, कुछ ऐसे गड़बड़ करते हैं, तो क्या होता है, माया की शिकार बन जाते हैं। माया का प्रभाव तो हर समय होता है, लेकिन जब हम कमजोर होते हैं तो माया की शिकार बन जाते हैं। तो कर्म का इसमें प्रश्न कहां आता है, कर्म का प्रश्न यहां आता है कि हमारे पुरानी जो आदतें हैं जिनको छोड़ना बहुत मुश्किल है, जो पुरानी आदतों से हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है, तो वो प्रबल रहते हैं। जब तक हम साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वैष्णव अपराध नहीं करते हैं, तो उन प्रवृत्तियों को हम दबा के रख सकते हैं। लेकिन जब हम साधना नहीं करते तो ये जो प्रवृत्तियां हैं ऊपर आती हैं, और जब ऊपर आती है तो माया तो है ही वैसे, इंतजार कर रही है, माया देवी झपट के पकड़ लेती है, फिर खत्म तो नहीं, खैर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है हमारे भक्ति मार्ग में। इसलिए अगर हम अच्छी तरह से नियमों का पालन करें, साधना अच्छी तरह से करें, वैष्णव अपराध न करें, तो हमारी जो पुरानी आदतें हैं, पुरानी प्रवृत्तियां हैं, जैसे शकटासुर, कल हम चर्चा कर रहे थे ना, शकटासुर को हम नष्ट कर सकते हैं। तो माया का प्रभाव क्यों होता है, शकटासुर की वजह से। शकटासुर हमारे हृदय में ज्यादा तेजस प्रभावशाली हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि शकटासुर को अंदर में खत्म कर दीजिए जल्दी से, ताकि हम माया के प्रभाव में न पड़े और आपके चरण कमलों में सेवा हमेशा जारी रखें। गुमे शाप लागू होते हैं कि नहीं, हमें इसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, खतरा की मोल लेना चाहिए अपने आप को, पर कहीं बाय चांस लग भी जाए, हो भी जाए सही, तो किसे मालूम, क्यों खतरा मोल लेना चाहिए अपने ऊपर। वैसे कलयुग में तो लोगों को शाप देने की शक्ति ही नहीं है। वैसे द्वापर में भी 12 साल का ब्राह्मण जो है, जैसे श्रृंगी श्रमिक ऋषि का पुत्र 12 साल का बालक है, उसने परीक्षित महाराज जैसे पृथ्वी के राजा शुद्ध वैष्णव जैसे व्यक्ति को उन्होंने शाप दिया और वो शाप काम किया। लेकिन हमें प्रयास नहीं करना चाहिए शाप देकर, लेकिन फिर भी हाँ, वैष्णवों को नाराज करेंगे तो उसका असर तो पड़ता ही है, क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। श्रवण कीर्तन करते समय त्रिविध ताप नहीं आता है, फिर भी नींद क्यों आती है, क्योंकि हम श्रवण नहीं कर रहे हैं। अगर श्रवण कर रहे होते तो नींद नहीं आती, लेकिन श्रवण नहीं कर रहे हैं, मन कहीं और चले जाता है उस समय, और चले जाता है तो माया आके पकड़ लेती है, फिर नींद आ जाती है। अगर वास्तव में श्रवण कीर्तन कर रहे होते तो नींद नहीं आती, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग इतना अच्छा है, श्रवण कीर्तन का मार्ग इतना अच्छा है कि जब भक्त लोग क्लास में बैठकर भी सो जाते हैं तो उनके चेहरे में ऐसे एक मुस्कान होती है, आनंद की मुस्कान, सोते वक्त सोते भी हैं क्लास में तो बड़े खुशी से सोते हैं। घर में नींद आती है तो व्यवसाय में क्या होगा, घर में क्या होगा, इधर क्या होगा, उधर क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, सोचते रहते हैं। लेकिन जब सत्संग में सोते हैं तो बड़े आराम से सोते हैं। देखिए भक्ति करने का यह भी फायदा है कि नींद भी अच्छी आती है, भले वो क्लास में नींद क्यों ना आए लेकिन नींद तो आती है अच्छी तरह से, जो पहले भक्ति में आने से नहीं होती थी। भगवान की योजना थी ना, ऐसे नहीं होता तो परीक्षित महाराज को शाप नहीं मिलता, शाप नहीं मिलता तो अपने राज को छोड़ते नहीं, राज को छोड़ते नहीं तो भागवत का प्रवचन सुनते नहीं, और भागवत का प्रवचन सुनते नहीं तो आज हम लोग यहाँ होते नहीं। हम लोग टीवी देख रहे होते या इधर उधर पाप कर रहे होते। तो भगवान चाहते थे कि हम आए राधा गोकुलम में बैठकर भागवत का श्रवण करें, इसलिए उन्होंने परीक्षित महाराज को ऐसे प्रेरित कर दिया। माया देवी देखती क्यों नहीं पड़ती है आपको माया देवी? बहुत भाग्यशाली है आप तो। प्रश्न ये है कि माया देवी दिखाई क्यों नहीं देती? हमको तो कम से कम 24 घंटे दिखाई पड़ती है, हमारे तो गले पकड़ के ही बैठी है माया देवी, 24 घंटे हमको दिखाई पड़ती है, क्या करें। और माया देवी ऐसे अलग अलग रूप हमारे सामने आके प्रस्तुत करते हैं, क्या करें। ऐसी भावना है तो बहुत अच्छा है कि माया क्या है वो मालूम ही नहीं है। और कोई प्रश्न?
लेकिन फिर भी वहां हम नींद को रोक नहीं पा सकते कभी कभी,
क्योंकि आदत से मजबूर है ना। हमारे जो मित्र बैठे हैं ना अंदर शकटासुर, वो बहुत उनको खिला पिला कर हमें इतना मोटा कर दिया, शक्तिशाली कर दिया, अभी वो उठने का नाम ही नहीं लेता है। उसे उठाने का प्रयास करते इतना भारी वजन है उसका, उठा नहीं सकते। तो शकटासुर को जो है भूखा रखना चाहिए, ताकि खुद मर जाए, भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम अपना भी प्रयास करना चाहिए कि हम क्लास में न सोएं, जप करते समय न सोएं, और जो भी इसके लिए आवश्यक है वो हमें करना चाहिए। कोई दूसरा भी हमें जगाए तो गुस्से न हो जाए, जप करते समय या श्रवण कीर्तन करते समय उत्साह से करना चाहिए, तब शकटासुर कमजोर हो जाएगा, नहीं तो शकटासुर और भी ज्यादा मजबूत होता जाएगा।
हमें वैष्णव अपराध करना बुरा बात मालूम है, होते भी हम वैष्णव अपराध करते हैं, ये कैसा होता है?
यही तो कल चर्चा की थी प्रश्नोत्तर के समय कि हम वैष्णव क्या है वो समझे नहीं है, श्रद्धा उतनी तीव्र नहीं है हमारे हृदय में, वैष्णव को भी साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो क्योंकि वो श्रद्धा नहीं है इसलिए भौतिक दृष्टिकोण के हम शिकार हो जाते हैं, भौतिक माया देवी के प्रभाव में आकर हम वैष्णवों को भी साधारण समझते हैं। तो इसलिए बार बार हमेशा यही हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण क्या है, कृष्ण के विग्रह क्या है, कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण के भक्त क्या है, कृष्ण का धाम क्या है, कृष्ण की लीलाएं क्या है, कृष्ण के ग्रंथ क्या है, हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए श्रवण कीर्तन चाहिए, बार बार श्रवण कीर्तन करने से ठोकर मार मार के दिमाग को समझाना चाहिए। ये बार बार श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तब धीरे धीरे से श्रद्धा बढ़ती जाएगी। ठीक है, और कोई प्रश्न?
हरे विष्णु, श्रीमद भागवतम और भगवत भागवतम में क्या डिफरेंस है?
श्रीमद भागवत में और
भगवत भागवत
और बृहद भागवत अमृत। बृहद श्रीमद भागवत तो ये है जो हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं हर रोज सुबह, व्यासदेव रचित, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और जो सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषिगणों को सुनाया। बृहद भागवत अमृत ये एक ग्रंथ है श्रीमद भागवत के ऊपर ही आधारित, जो कि सनातन गोस्वामी ने लिखी है। श्रीमद भागवत के रस की वृद्धि करने के लिए, रस के सागर की वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए सनातन गोस्वामी ने ये कहा। कहीं उचित समय पर हम बृहद भागवतामृत का सारांश आपको सुनाएंगे, बहुत सुंदर कथा भी है वो। परीक्षित महाराज भी हैं, उनकी माता उत्तरा भी हैं, नारद जी की भी कथा है। तो कभी उचित समय पर हम बृहद भागवतामृत की कथा भी सुनाएंगे। और कोई प्रश्न?